हरे कृष्णा, आपका प्रश्न है कि एक लेक्चर में जब मैंने ये बताया था कि जब काराग्रह में देवकी के गर्भ से जिसका जन्म होता है वो रियल में विष्णु तत्व होते हैं और वहाँ यशोदा माता के गर्भ से एक कन्या जो कि योग माया होती है और दूसरे साक्षात भगवान श्री कृष्ण होते हैं, तो जब वसुदेव देवकी के पुत्र विष्णु तत्व को यशोदा के यहाँ ले आए तो विष्णु तत्व को वहाँ छोड़कर कन्या को साथ ले गए और वहाँ पर कृष्ण तत्व और विष्णु तत्व एक हो गए। और फिर बाद में जब अक्रूर जी भगवान को लेने आए तो जब भगवान ने अंतिम स्नान किया यमुना में तो विष्णु तत्व और कृष्ण तत्व वापिस से अलग हो गए और कृष्ण तत्व यमुना में ही रह गए और विष्णु तत्व अक्रूर के साथ चले गए, क्योंकि जो कृष्ण तत्व हैं वो गोकुल से बाहर एक कदम भी नहीं जाते। तो जब भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवत गीता सुनाई थी वो किसने सुनाई थी, विष्णु तत्व ने या कृष्ण ने? अत्यंत ही सुंदर प्रश्न है। अब मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि विष्णु तत्व और कृष्ण तत्व में क्या अंतर है और हमें भगवत गीता किससे सुनी है, बहुत सुंदर जिज्ञासा है। देखो, विष्णु तत्व और कृष्ण तत्व में अंतर बताऊं पहले। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके पिताजी हाई कोर्ट में जज हैं, ठीक है, और घर में क्या है, वो पिताजी हैं। अब जब वो हाई कोर्ट में कोई फैसला सुनाने के लिए जाते हैं तो फिर वो केवल जज हैं, वहां पर वो उसके पिताजी नहीं है। वहां पर आके वो छोटा बच्चा अपने पिताजी के गोद में नहीं बैठ सकता, उनसे चॉकलेट नहीं मांग सकता, है ना। वो उस टाइम पर खाली जज है, वो उस टाइम पर उसके इवन अगर उसका अपना बेटा भी अपराधी के रूप में आएगा तो उसको अपराधी की तरह उसे सजा सुनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उस समय उसको वो ये सोचे कि भाई ये तो मेरा बेटा है, मैं इसके साथ कैसे ऐसा कर सकता, मेरा कर्तव्य है इसका रक्षा करना। लेकिन वो बेटा अपराधी जब उसके घर पे आएगा, भले ही वो जज है लेकिन उसको पता है कि मेरे बेटे ने अपराध किया है, तो हर मुमकिन कोशिश करेगा, एक वकील बुलाएगा अच्छा जो कि मेरे बेटे का केस लड़े और जीते, है ना। क्योंकि वो पिता जब अपने कार्यशाले में जाते हैं तो अपने एक अपना एक अंश अपना एक दूसरा एक्सटेंड अपने को नहीं कर सकते कि एक उसमें से जाए जज में अदालत में जाके वो अपना काम करे और एक घर पे भी रहे, ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है। हम अगर कहीं जाते हैं तो हमें वही जहाँ पर हम रहते हैं वहां से जाना पड़ता है, यानी कि हम एक ही होते हैं ना, हम अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो जहाँ पर हम हैं वहां पर हम एक ही रोल प्ले कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब देखो, अगर लेकिन भगवान क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार करोड़ों रूप धारण कर सकते हैं, ठीक। तो भगवान जो है वो अपने, भगवान ने कहा वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम् गच्छति, कि मैं वृंदावन को त्याग कर एक कदम भी बाहर नहीं जाता, मेरा रियल स्वरूप जो है वो वृंदावन से कभी भी बाहर नहीं जाता। अगर कभी कार्यशाले में जाना होता है, कार्यशाले मतलब अगर मुझे, अब देखो वृंदावन भगवान का घर है और मथुरा द्वारिका ये सब भगवान की कर्म भूमि है, भगवान आए हैं कार्य करने के लिए। भगवान ने कहा, कृष्ण ने 3.22 में बहुत ही सुंदर बताया, भगवान कहते हैं नमे पाठास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता होती है। कार्य जीव क्यों करता है? या तो उसे किसी चीज की आवश्यकता होती है या फिर वो समझता है कि ये मेरा कर्तव्य है क्योंकि संसार में आता है, तो वो सारी चीजें हम कर्तव्य समझ के करते हैं या फिर किसी चीज की आवश्यकता के कारण करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं नमे पार्थास्ति कर्तव्य, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मेरे लिए कोई भी नियत कर्म नहीं है, मेरी मर्जी है जो मैं करूं, मेरी मर्जी है जो मैं ना करूं। नमेम गाथासि कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मैं भगवान जो है वो स्वतंत्र है। फिर भी कहते हैं नाना वाक्तम अवाक्तव्यम वर्त एव च कर्म है, ना मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है ना अभाव है, लेकिन फिर भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो पूछा जाए क्यों करते भगवान, तो भगवान आगे बता दे 23 में, यदि यम न वर्ते यम जातु कर्मण्येन्द्रिय मम वर्तमान वर्तन्ते मनुषा पार्थ सर्वशः। इसका कारण ये है कि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक नहीं करूंगा तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। यानी भगवान कहते हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो सब बोलेंगे कि हम भी नहीं करते, कृष्ण भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपना कर्म भूमि में जाता हूँ, अपनी यहाँ ये जो मेरी जन्मभूमि है उसके लिए मुझे उसको त्याग कर मुझे कर्मभूमि में जाना होता है, मथुरा में जाना होता है, द्वारिका में जाना होता है, अन्य जगहों पे जाना होता है। लेकिन मैं कोई साधारण थोड़े हूँ कि मैं अपने उसी रूप से जाऊँ, मुझे मैं अपने आप को एक्सपेंड कर सकता हूँ, मैं अपने रियल स्वरूप को वहीं पर रखता हूँ जो मेरा मैं वास्तविक, जैसे आपका पिता है वो घर पे होना ज्यादा आवश्यक है ना, आपको जब भी जरूरत होगी आप पिता के पास जाके कुछ भी मांग सकते हो। घर पे अगर वो नहीं है, वो ऑफिस गए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनका इंतजार करना पड़ेगा कि कब मेरे पिताजी ऑफिस से लौट कर आए तो मैं उनसे ही अपनी याचना करूँ। अब अगर ऐसा होता कि भगवान भी अपने घर को छोड़कर वो अपने कार्यशाले में जाते तो उनके सारे भक्तों को इंतजार करना पड़ता कि कब भगवान वापस आएंगे तो हम अपने दुख, अपने दर्द, अपनी याचनाएं, अपना प्रेम उनको समर्पित कर सके। भक्त सदैव अपना प्रेम भगवान को समर्पित करने के लिए लालायित होता है, तो यदि भगवान घर पे नहीं होंगे, कार्यशाला में गए होंगे, तो इंतजार करना पड़ेगा ना उनको। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, चाहे मैं वृंदावन को छोड़कर मैं एक कदम ही बाहर नहीं जाता, चाहे मैं राजा बनूं, चाहे मैं कहीं पर अपने कार्यशाले में जाता हूं, कंस को मारने जाता हूं, लेकिन वृंदावन में घर में मैं सभी आप लोग के लिए बैठा हूं, तुम लोग कभी भी आकर मुझसे अपने प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। एक भक्त ने पूछा था किसी दूसरे डिवोटी से, मैंने कथा में सुना था कि उसने यही प्रश्न किया था कि कृष्ण में और विष्णु तत्व में क्या फर्क है। तो जिसने पूछा था ना वो अमिताभ की फिल्में बहुत देखता था, तो उसने उत्तर दिया कि कृष्ण और विष्णु तत्व में वही फर्क है जो अमिताभ और डॉन में है। वो हैरत से देखने लगा, बोला नहीं समझ में आया, कृष्ण और विष्णु तत्व में वही फर्क है जो अमिताभ और शहनशाह में है। फिर उसको देखने लगा, बोला कृष्ण और विष्णु तत्व में वही फर्क है जो अमिताभ और कुली में है। तो वो हंसने लगा कि इनमें तो कोई अंतर ही नहीं है, सिर्फ रूप चेंज किया, यानी कि वो जब अमिताभ कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे जब वो कुली का रोल कर रहे होते हैं तो कुली बनते हैं, जब डॉन का रोल कर रहे हैं डॉन बनते हैं, जब शहनशाह का रोल करते हैं तो शहनशाह बनते हैं, लेकिन उसमें कोई अंतर तो नहीं है ना। लेकिन उस समय क्या होता है कि जिस टाइम पर वो कुली का रोल कर रहे हैं उस टाइम पर अमिताभ नहीं है, खाली कुली है ना, क्योंकि वो कुली का रोल कर रहे हैं। आप उस टाइम पर अगर आप उसके भाई हो, बेटे हो, तो वो रोल कर रहे होते हैं कुली का, जब रोल प्ले हो रहा होता है तब आप उसके साथ अपना व्यवहार नहीं कर सकते, जैसे आप रियल में उसके संबंध से हो, वो आप संबंध निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन जब वो अमिताभ के रूप में घर पे होता है तो आपका अपना मित्र है, अपना भाई, अपना, तो उसी तरह से भगवान जो वृंदावन के हैं वो उनका रियल स्वरूप है। लेकिन अब रियल का मतलब क्या है कि वो दूसरा रोल कर रहे हैं द्वारिका में जाकर वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई दूसरे हैं। विष्णु तत्व और कृष्ण सेम है, लेकिन क्या है कि अब देखो आप कुली के रूप में यदि अमिताभ को देखोगे तो ये थोड़े कहोगे कि ये तो कुली, अब उस टाइम पर भी जब वो अपना एक निर्देशन दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो वही है जो वो उपदेश दे रहा है अगर कहीं पर, तो वो उसके शब्द है ना, वो उसको। अब देखो अब यहाँ पर ये बात भी समझनी है, ठीक है, कि जब वो कोई रोल कर रहा है तो उस टाइम पर डायरेक्टर कोई और है, वो उसको बताएगा कि आपको ऐसे करना है, वो डायरेक्टर के हिसाब से डायलॉग बोलेगा। लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं है। हम असल में हमारी बुद्धि बहुत भौतिक है ना, तो हमें बुद्धि को ना भौतिक तरीके से समझाना पड़ता है कि कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड, वो अपनी इच्छा से सारा कार्य करते हैं। अब उनको डायरेक्ट करने वाला कोई नहीं है, उनको बताने वाला कोई नहीं है, वो गीता अपने शब्द में, गीता के भगवान जहां पर भी जो भी रोल कर रहे होते हैं भगवान के अपने शब्द यूज करते हैं, भगवान अपनी योजना से जो भी रूप धारण करते हैं, तो भगवान का वो भी रियल स्वरूप है। यहाँ पर ये नहीं है कि वो भगवान का अलग स्वरूप है, वो भगवान का अलग स्वरूप है, लेकिन भगवान जो वास्तविक ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण है उनको सिर्फ प्रेम करना आता है। सच बात बताऊं मैं आपको, इनको हथियार उठाना भी नहीं आता। आप बोलोगे कि हथियार उठाना नहीं आता, इतने सारे जब वो बचपन में वृंदावन में रहते थे तो कितने सारे राक्षसों को मारा, लेकिन याद करके देखो किसको मारा बताओ हथियार के साथ। सबसे पहले पूतना आई, दूध पीते पीते मार डाला, हथियार उठाने की जरूरत नहीं। उसके बाद अगासुर आया, उसके अंदर सारे बच्चे चले गए और वो भी है ना अंदर चले गए और बड़ा होकर अपना स्वरूप धारण करके उसको फाड़ डाला। उसी तरह से कालिया को नाचते नाचते मार डाला। मतलब भगवान ने वृंदावन में एक बार भी हथियार नहीं उठाया, लेकिन अब भगवान को क्योंकि दूसरा रोल करना था, दूसरी चीजें ऐसी करनी थी जहां पर उनको हथियार भी उठाना था, जहां पर उनको हम जैसे अज्ञानियों के लिए उपदेश भी देना था। वृंदावन में भगवान ने भगवान होते हुए भी किसी को उपदेश नहीं दिया, कभी किसी को भगवद गीता नहीं सुना, क्योंकि वृंदावन में केवल प्रेम है, केवल प्रेम करते हैं। भगवान बोलते हैं आप खाली मुझसे प्रेम करो, तो भगवान वृंदावन में उनका जो वास्तविक भगवान की जो रियल नेचुरल है ना भगवान का स्वभाव वो प्रकट होता है। और भगवान को क्योंकि हम जैसे अधर्मी और हम जैसे पापियों के लिए शिक्षा देनी होती है, अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं, इसलिए वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, वो मथुरा जाते हैं, द्वारिका जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कृष्ण अलग है, वो कृष्ण अलग है, लेकिन मेरा बताने का मतलब ये था कि वास्तव में वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं जाते, और वृंदावन की कृष्ण को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप देखो ठीक है, भगवान ने वृंदावन में केवल 10 साल 11 साल वहां पर बिताए, ठीक है। भगवान की एज कितनी थी, 125 साल। उसके बाद सारा जो जीवन है भगवान ने मथुरा में 100 से भी ज्यादा साल तक मथुरा में द्वारिका में बिताया। लेकिन आपके मंदिर में मथुरा और द्वारिका की एक भी फोटो नहीं, क्यों? कहीं पर किसी भी मंदिर में हम देखते हैं विग्रह कभी ऐसी नहीं होती है जब वो रुक्मणी माता के साथ हो, या फिर वो द्वारिका में द्वारिका के भगवान हो, या फिर द्वारिका में जहाँ पर उनका ये क्षेत्र है जहाँ पर रानी है। लेकिन ज्यादातर जो भी मंदिर हम देखते हैं वहां पर राधा रानी और कृष्ण यानी वृंदावन का सीन होता है। इसका दिखाने का मतलब ये है कि हमें उस स्टेज को प्राप्त करना है, उस भगवान के पास हमें याचना, वो उनका वास्तविक रूप है, रियल स्वभाव है, वो वास्तव में कृष्ण है जो कि हमसे प्रेम करते हैं, जो गोपियों से प्रेम करते हैं, जो यशोदा मैया की एक लकड़ी जब दिखाते हैं उससे भयभीत होता है, हो जाते हैं और प्रेम की डोरी में बंध जाते हैं, ये कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है। इसी की ओर हमें अपने प्रेम का आकर्षण करना है। बाकी वो सारे भी कृष्ण से, जितने भी विष्णु तत्व निकलते हैं, चाहे वो नरसिंह हो, राम हो और राह हो, जो भी हो, वो सब भगवान की एक्सपेंशन है। भगवान ने खुद को उसी के अंदर चेंज मतलब एक्सपेंड किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग हो गए, वो अलग हो गए, ठीक है ना, वो भी सेम होते हैं, लेकिन प्रेम करने के योग्य, प्रेम करना, जो प्रेम का समर्पण जो हमें देना है वो उस स्वरूप को देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भगवद गीता भगवान बता रहे हैं वो भी भगवान के अपने शब्द हैं। भगवान क्योंकि हम अपराधियों के लिए ये उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक वो अब ये सुनकर इसको फॉलो करके फिर हम लोग भी ब्रज भक्ति में आ जाएंगे खुद ब खुद। ऐसे मैंने बताया था ना कि कनिष्ठ भक्ति के बाद उसके बाद उत्तम अधिकारी, उसके बाद मध्यम अधिकारी, फिर उत्तम अधिकारी रागानुगा, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति जब आएगी फिर हम इन सब से ऊपर उठ के ब्रज भक्ति में आ जाएंगे। फिर ये स्टेज को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अभी हम पर्याप्त नहीं है, तो इसलिए हम भगवद गीता का सहारा लेते हैं, शास्त्रों का सहारा लेते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, विधि विधानों का सहारा लेते हैं, फिर हम कृष्ण के प्रेम में खुद को समर्पित करने के योग्य हो जाते हैं और प्रेम भक्ति के स्टेज पर आ जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण।